یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
ہفتہ یکم جون، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ آسیہ انصر کا سلام۔ امریکی ریاست ورجینیا میں سرکاری عمارت پر فائرنگ کے واقعے میں 12 افراد ہلاک۔ عینی شاہد نے اپنا خوف یوں بیان کیا۔
We were all just terrified. We almost kind of felt like it wasn't real. That we were in a dream. You know, you hear this all the time on the news, but you don't think it's ever going to happen to you.
بالی ووڈ اداکار وویک اوبرائے کہتے ہیں، جب فلم میں پی ایم بن گئے تو ایم پی کا ٹکٹ لے کر کیا کرتے؟
کوئی ریجنل پارٹی، نیشنل پارٹیز، الگ الگ پارٹیوں سے ٹکٹ ہمیشہ آفر کیا گیا اور میں نے ہمیشہ منع کیا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کیوں منع کیا، تو میں کہتا ہوں کہ ایم پی کیوں بننا جب آپ پی ایم بن سکتے ہیں اسکرین پر۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں ساتھ سہیل کے ساتھ۔
امریکی ریاست ورجینیا میں ایک سرکاری عمارت میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص نے عوام کو سروسز فراہم کرنے والی ایک سرکاری عمارت میں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ مشتبہ شخص ایک عرصے سے ورجینیا بیچ شہر میں ملازم تھا۔ پولیس کی جانب سے کی گئی جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں پاکستانی فوج کی گاڑی پر فائرنگ اور بم حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک جوان ہلاک ہو گیا۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق، شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کے اہلکار معمول کی گشت پر تھے کہ فوج کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور آئی ای ڈی سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں سپاہی عامل شاہ ہلاک ہو گئے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 4.26 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد نئی قیمت 112.68 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 4.50 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ افغان طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ نے کہا ہے کہ ان کی جنگ جاری رہے گی جب تک ان کی تحریک کے مقاصد پورے نہیں ہو جاتے۔ البتہ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے دروازے کھلے رہیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے انڈیا سے ترجیحی بنیادوں پر تجارت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ انڈیا نے منصفانہ اور مناسب انداز میں امریکہ کو انڈین مارکیٹس تک رسائی نہیں دی اور انڈیا اکیلے نے اس معاہدے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تاحال انڈیا کی حکومت کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تنزانیہ حال ہی میں ان افریقی ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے پلاسٹک بیگز پر پابندی لگا دی ہے۔ پلاسٹک بیگز کے استعمال پر اب جرمانہ عائد ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے ساتھ سہیل سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں لوگ اشیائے ضروریہ کی مد میں روزانہ مختلف قسم کے ٹیکسز ادا کرتے ہیں۔ یہ بلا واسطہ یا بل واسطہ ٹیکسز آخر ہیں کیا؟ اور پھلوں کا بادشاہ آم اپنے ذائقے اور خوشبو کی وجہ سے سب کا من پسند، لیکن گرمی میں آم کتنی مقدار میں کھایا جائے، اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ امریکی ریاست ورجینیا میں جمعے کو ایک مشتبہ شخص نے پبلک یوٹیلیٹی یعنی عوام کو سروسز فراہم کرنے والی ایک سرکاری عمارت میں اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمشاد آفریدی کی زبانی۔
ورجینیا میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے کے بعد ورجینیا بیچ میونسپل سینٹر سے فائرنگ کی خبریں آنے لگیں، جس کے فوراً بعد مختلف قسم کی سرکاری عمارتوں والے اس علاقے کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا اور وہاں کام کرنے والوں سے عمارتوں کو خالی کروانا شروع کر دیا۔ میگن بینٹن نامی خاتون بھی فائرنگ کے وقت عمارت میں موجود تھی۔ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں بتایا۔
ہم سب خوف زدہ تھے، لگ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہو۔ 4 بجے کے آس پاس جب یہ واقعہ پیش آیا اور میری سپروائزر نے جب شور سنا تو وہ اپنے دفتر کے تمام افراد سے ملی۔ میں نے اسی وقت مدد کے لیے 911 کو فون ملایا और पुलिस के पहुंचने तक फोन पर ही रही। उस वक्त शायद दफ्तर में तकरीबन 20 के करीब लोग मौजूद थे। हमने दरवाजा बंद कर दिया था।
वर्जीनिया बीच में पुलिस के सरबराह जेम्स सर्वेरा कहते हैं कि जैसे ही उन्हें इत्तला मिली तो चार पुलिस एहलकार फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचे।
पुलिस एहलकार इमारत में फौरी तौर पर दाखिल हुए। गोलियों की वजह से उन्हें ये पता चला कि मुसल्ला शख्स किस मंजिल पर मौजूद है। पुलिस एहलकार फौरी तौर पर मुश्तबा शख्स के साथ मुकाबले में मसरूफ हुए और मैं आपको बता सकता हूँ कि उन चार पुलिस एहलकारों और मुसल्ला शख्स के दरमियान फायरिंग का तबादला काफी देर तक चलता रहा।
जेम्स सर्वेरा का मजीद कहना था कि मुश्तबा शख्स ने एक फर्द को कार में गोली मारकर हलाक किया जबकि बाकी अफराद को सरकारी इमारत के तीन मंजिलों पर निशाना बनाया गया। इस वाक़े के बाद शहर के मेयर बॉबी डेर ने अपने एक बयान में इसे वर्जीनिया के लिए सियाह दिन करार दिया।
आज वर्जीनिया बीच का सियाह दिन था। इस जालिमाना इकदाम की वजह से वर्जीनिया बीच और हमारा पूरा मुल्क सदमे में है।
वर्जीनिया के हुकाम ने ताहाल हमलावर की शनाख्त जाहिर नहीं की है लेकिन पुलिस की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक हो गया और फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। पुलिस ने जाए वकुआ से एक राइफल और पिस्तौल बरामद किया है जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि इसे मुश्तबा शख्स ने इस्तेमाल किया है। पुलिस का कहना है कि उनके ख्याल में बंदूक बरदार ने ये काम तनहा अंजाम दिया है। अमरीकी ट्रैकिंग वेबसाइट गन वायलेंस आर्काइव्स के मुताबिक ये अमरीका में रवा साल होने वाला 150वां शूटिंग का वाकया है।
ये थे शमशाद आफरीदी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खड़ कमर में फौज और पश्तून तहफ़ मूवमेंट के अरकान के दरमियान होने वाले वाक़े का इल्ज़ाम एक हुकूमती रिपोर्ट में रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर पर लगाया गया है। ये रिपोर्ट शुमाली वजीरिस्तान के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हुकूमत को जमा करवाई गई है जो अब तक इस मामले पर शाया होने वाली सबसे मुफसिल रिपोर्ट है। इस बारे में तफसील सुनिए इस्लामाबाद से हमारी साथी सहर बलोच से।
पाकिस्तान की फौज और पश्तून तहफ़ मूवमेंट की शुमाली वजीरिस्तान में मुबैना झड़प के बाद डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान की जानिब से इस वाकये की रिपोर्ट हुकूमत को जमा कर दी गई है। रिपोर्ट के मतन के मुताबिक 29 अप्रैल को फौज के गश्त करते हुए एक दस्ते पर हमला किया गया जिसके नतीजे में फौज के तीन अहलकार हलाक हुए और फिर कुछ हमले 1 मई को अलवारा के इलाके में किए गए जिनमें 4 फौजी अहलकार हलाक हुए और 17 जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों के बाद 24 मई को फौज की तरफ से क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया जिसके नतीजे में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों पर इलाका मकीनों का एक ग्रोह जिनमें रुकने कौमी असेंबली मोहसिन दावड़ और अली वजीर शामिल थे एहतजाज करने के लिए डोगा माचा इलाके से खारकमर चेक पॉइंट तक पहुंचे और मुबैना तौर पर तोड़फोड़ गालम गलोच करते हुए मुल्क मुखालिफ नारे लगाए। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक खारकमर में फायरिंग के नतीजे में 13 इलाका मकीन हलाक जबकि 25 जख्मी हुए हैं। इनके अलावा एक फौजी अहलकार की हलाकत समेत 7 अहलकार जख्मी हुए हैं। याद रहे इससे पहले पाकिस्तानी फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा की जानिब से दावा किया गया था कि वाकये में 3 हलाकतें हुई हैं। गोली किसने चलाई इस हवाले से हुकूमती रिपोर्ट इस बात का सारा इल्ज़ाम रुकने कौमी असेंबली मोहसिन दावड़ के साथ मौजूद मुबैना तौर पर मुसल्ला अफराद पर डाल रही है। लेकिन पश्तून तहफ़ मूवमेंट के एक रुकन ने BBC से बात करते हुए बताया कि मोहसिन दावड़ के साथ मौजूद लोगों में से किसी के पास भी असलहा मौजूद नहीं था सिवाय उनकी हिफाजत पर मामूर लेवीज के एक अहलकार के जो उस वक्त वर्दी में उनके साथ मौजूद था।
बहुत बर्बरियत की, बहुत ज्यादा जुल्म की और ऊपर से हम पे इल्जाम लगा दिया कि इसने अटैक किया। हमारे साथ कोई बंदूक नहीं थी, कोई गोली नहीं थी और अली मोहसिन दावड़ ने कहा है दुनिया के किसी कोर्ट में मैं पेश होने और इत्तिसाब के लिए तैयार हूँ लेकिन फिर इसने भी तैयार होने।
पाकिस्तान में हुकूक इंसानी के कमीशन के सरबराह डॉक्टर मेहदी हसन ने भी इस हवाले से एक बयान में शुमाली वजीरिस्तान में फौजी ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में एक पश्तून तहफ़ मूवमेंट के 3 कारकुनों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया था और ये खदशा जाहिर किया था कि इससे तंजीम और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा होगा। उनका कहना था कि इस सूरतेहाल से रियासत और कबायली इजला के रिहायशियों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर कशीदगी जन्म ले सकती है। इस वाकये में अब तक सिर्फ पाकिस्तानी फौज का मौकिफ सामने आ रहा है जबकि इलाके में मौजूद एक सहाफी को इस वाकये की रिपोर्टिंग करने पर गिरफ्तार करके छोड़ा जा चुका है। दूसरी जानिब रुकने कौमी असेंबली अली वजीर की वालिदा ने अपील की है कि जिन लोगों के साथ नाइंसाफी की गई है उनसे इंसाफ किया जाए। सहर बलोच, BBC, اسلام آباد.
دو روز قبل وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے صرف 1% افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھی عماد خالد نے اسی بیان کی حقیقت جاننے کے لیے حکام اور معاشی ماہرین سے بات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ عوام روزانہ پیٹرول، گیس، بجلی، موبائل فون کارڈ سمیت جو دیگر اشیاء پہ درجنوں ٹیکسز ادا کر رہے ہیں وہ کون سے ہیں اور بلا واسطہ اور بل واسطہ ٹیکسز آخر کیا ہیں؟
ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جیسے انکم ٹیکس جس کو ہم آمدنی ٹیکس کہتے ہیں، ایگریکلچرل ٹیکس، زرعی ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس، اور یہ ہر تنخواہ دار طبقہ اور کاروباری طبقے پہ لازم ہے کہ وہ اپنی سالانہ آمدن اور اس زرعی پراپرٹی یا زرعی جو زمین ہے اس سے حاصل ہونے والی آمدن کے اگینسٹ وہ ٹیکس جمع کروائے. اس میں جو ایک مسئلہ ہمارے ملک میں ہے کہ ہمارا تنخواہ دار طبقہ جو ہے صرف وہ یہ ٹیکس ادا کرتا ہے، وہ چاہے سالانہ گوشوارے اپنے ٹیکس کے جمع کرواتے ہوں یا نہ کرواتے ہوں، جس کو ہم فائلر اور نان فائلر کہتے ہیں. تنخواہ دار طبقے کا تو ٹیکس کٹ جاتا ہے، لیکن جو کاروباری حضرات ہیں جو اپنی سالانہ آمدن ظاہر نہیں کرتے تو وہ اس ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. دوسرا نظام ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا، جو عام فہم میں لوگوں نے بہت زیادہ سن رکھے ہوں گے، جیسے کہ سیلس ٹیکس، وتھ ہولڈنگ ٹیکس، ایکسائز، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، ایسے بہت سارے ٹیکسز ہیں، سر چارجز، پیٹرولیم لیویز کی مد میں، جو ہم اگر پیٹرول ڈلوانے جا رہے ہیں تو ہم اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم اگر موبائل کارڈ لوڈ کر رہے ہیں اپنے موبائل میں تو اس پہ ایک خاص مد میں ٹیکس کاٹا جا رہا ہے، اگر ہم کوئی چائے کی پتی یا ادویات لینے جا رہے ہیں تو اس پہ جنرل سیل ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ڈائپر لینے جا رہے ہیں بچوں کے لیے تو اس پہ بھی دو طرح کے ٹیکسز عائد ہیں، جس میں کسٹم ڈیوٹی ہے کیونکہ وہ باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں اور ساتھ سیل ٹیکس ہے. تو ایسے بہت سارے ٹیکسز ہیں جو ان اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں
اور جو کہ ہر پاکستانی لامحالہ ادا کر رہا ہے.
جی لامحالہ، وہ چاہے ایک ریڈی بان ہو، چاہے وہ ایک کاروباری حضرات ہو یا وہ ایک تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہر پاکستانی جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ادا کر رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ میں اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں گا کہ اگر ہم کہیں پہ کوئی کسی ریسٹورینٹ میں کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم پھل بھی خریدتے ہیں، تو ہم ان تمام ٹیکسز میں سے کوئی نہ کوئی ٹیکس کسی نہ کسی مد میں ادا کر رہے ہیں.
اچھا عماد، یہ بھی بتائیے کہ حکومت بار بار کہتی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانا ضروری ہے، تو فائلرز کے لیے کیا کوئی ایسے انسینٹیو رکھے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو سکیں؟ حکومت کے کچھ اقدامات ایسے ہیں
اس کے لیے؟ ایک تو ابھی حالیہ جو حکومت کی طرف سے ایمنسٹی اسکیم کے متعارف کروائی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ آپ اپنی بے نامی جائیداد، اپنے جو آپ کے پاس پیسے ہیں، اگر کوئی اور آپ کے پاس ایسا ایسٹ ہے تو وہ آپ ڈکلیئر کریں تاکہ حکومت جو ہے اس پہ آپ کو چھوٹ دے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. جو ہماری ماہرین سے بات ہوئی ہے تو ماہرین نے یہ کہا، جن میں کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو سب سے پہلے عوام کے اعتماد بحالی پہ کام کرنا چاہیے. عوام کو یہ یقین ہو کہ اگر وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو وہ ایک درست جگہ پہ استعمال کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں ابھی تک تو حکومت نے کچھ مراد دی ہیں، جن میں آپ کو جو شرح فیصد ہے وہ کم رکھی گئی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، کم آمدنی والوں کے لیے، تاکہ ان کو صرف ٹیکس نیٹ میں لایا جائے.
اور آج بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر ہم نے آپ سے پوچھا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کے باوجود پاکستان میں پیٹرول مزید مہنگا کیوں کیا جا رہا ہے، حکومت کے معاشی فیصلے پر عوام کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں؟ سنتے ہیں آپ کی رائے.
السلام علیکم، میرا نام الطاف بنگش ہے اور ضلع کرم سے میرا تعلق ہے. حالیہ حکومت مسلسل تیل کی قیمتیں اس وجہ سے بڑھا رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تیل پر سبسڈی ختم کر کے اور تیل کی قیمتیں بڑھا کر ہم زیادہ سے زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں اور قومی خزانے میں ڈال سکتے ہیں.
کیونکہ حکومت کی جو معاشی حالات ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، وہ آئی ایم ایف کی طرف جانا چاہتے ہیں. اگر وہ دوسری لوگوں کی چیزوں کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے تو اس سے عوام میں اور بھی وہ اشتعال آئے گا.
اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو عالمی منڈی کے حساب سے خام تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ عالمی منڈی کے حساب سے رکھنی چاہیے. ہاں باقی یہ جو سارے میرے خیال سے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت شاید بڑھائی جا رہی ہیں، تو اس پہ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے. और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। रसूल बख्श फ्रॉम सांगड़।
ये थी आपकी राय। इसी के साथ प्रोग्राम सरबीन अपने निस्फ को पहुंचा। एक वक्फे के बाद खेलों की खबरें और फिर बाज़ दीगर मौजूआत प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे।
सरबीन सुनने या देखने के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर तशरीफ लाइए। हमारा टीवी प्रोग्राम पीर से जुमे तक पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे bbcurdu.com और बीबीसी उर्दू के फेसबुक पेज पर भी बराह रास्त नशर किया जाता है। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी राब्ता कर सकते हैं, हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। हमारा ट्विटर हैंडल है @bbcurdu।
खेलों की खबरों के साथ मैं हूं नाजिया गुलजार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शेड्यूल आज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। कार्डिफ में श्रीलंका की जानिब से दिया गया 137 रन का हदफ न्यूजीलैंड की टीम ने 16वें ओवर में पूरा कर लिया, जबकि दूसरे मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें ब्रिस्टल में मद्दे मुकाबिल हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान का अगला मैच कहां और किस टीम के खिलाफ होगा बता रहे हैं नॉटिंघम से हमारे साथी अब्दुल रशीद शकूर।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच पीर के रोज नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड पर खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का अपना आगाज बहुत ही मायूसकुन अंदाज में किया ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 105 रन पर आउट होकर वो मैच 7 विकेटों से हार गई। पाकिस्तान के जो कप्तान है सरफराज वो भी काफी डाउन थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उनका ये कहना था कि ये टीम बाउंस बैक करेगी। अब देखना यह है कि इंग्लैंड बहुत ही मजबूत टीम, दुनिया की नंबर एक टीम जिसमें बटलर, बेस्टो, जो रूट, मॉर्गन ऐसे बैट्समैन, उनके खिलाफ पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं।
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल मुकाबलों में यूनान के स्टीफानो सिसिपास ने सर्बिया के फिलिप क्राइनोविच को 3-1 से शिकस्त दे दी है। फुटबॉल चैंपियंस लीग के फाइनल में टॉटनम की टीम लिवरपूल के खिलाफ मैदान में उतरेगी। टॉटनम के कप्तान ह्यूगो लोरिस कहते हैं कि उनकी टीम ने भरपूर मेहनत की है और अब वो चैंपियंस लीग जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। हॉकी प्रो लीग में आज खवातीन के दो मुकाबले हो रहे हैं। पहले मैच में अमेरिका और न्यूजीलैंड जबकि दूसरे मैच में नीदरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की टीमें हिस्सा लेंगी।
खेलों की खबरें आपने नाजिया गुलजार से सुनी और हालात हाजरा का प्रोग्राम सरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। और अब एक नज़र bbcurdu.com पर। इंडिया के मुकाबले हुस्न में इस साल मिस इंडिया का ताज कौन पहनेगा, ये फैसला तो 15 जून को ही होगा, लेकिन इस वक्त इंडिया भर से इस प्रोग्राम के मुंतजमीन को गोरी रंगत से मुतासर होने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर सिर्फ गोरी रंगत वाली लड़कियों के इंतखाब पर इंडिया का मुकाबले हुस्न तनकीद की जद में के उनवान से खबर मौजूद है, ज़रूर पढ़िएगा। रंग, शक्ल और जिसामत पर किसी शख्स को मजाक का निशाना बनाना एक उमूमी रवैया है। बॉलीवुड स्टार विद्या बालन भी इस रवैये का शिकार रही हैं और अब एक जज्बाती वीडियो में उन्होंने इस पर खुलकर बात भी की है। पहले जरा झलक सुनिए।
कभी तू मोटी कहता है, कभी तू छोटी कहता है, कभी तू काली कहता है, कभी तू सांवली कहता है, तेरी इन बातों से मेरा दिल दुखता है, तू जाने अनजाने में क्यों नादानी करता है। नाम भूल जाएगा, नए नए निकनेम से बुलाएगा, मेरी खुद की भी कोई पहचान है।
विद्या बालन की जानिब से जारी की गई ये वीडियो उनके अनकरीब आने वाले रेडियो शो धुन बदल के देख की प्रमोशन के सिलसिले में जारी की गई है। और अब सुनिए हफ्तावार फीचर शोबिज राउंड अप।
सलमान की नहीं किसी और के फैन हो चुके हैं। किसके ये बताने की जरूरत है क्या? हालांकि अर्जुन कपूर की फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन अर्जुन अब भी बहुत पुरुमीन है, क्योंकि अभी पानीपत बाकी है मेरे दोस्त। मतलब ये कि अर्जुन कपूर की फिल्म पानीपत, जिसकी शूटिंग अभी जारी है, ये एक पीरियड फिल्म है और जिसमें अर्जुन का रोल जरा हटके है। आजकल काफी डिफरेंट जॉनर्स की फिल्में कर रहे हैं आप।
यार, इमेज को तोड़ने का ही मजा है। अब क्या है, बैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाला हाल है। मैं जो चाहूं इवेंचुअली तो डेस्टिनी एंड लाइफ हैज इट्स ओन कोर्स। आई लाइक डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स। आई वुड लव टू डू माय कॉमेडीज एंड माय रोमांसेस। आई डोंट गेट मी रॉन्ग।
कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि बैगर्स कांट बी चूजर्स? मैं हूं नुसरत जहां और आप मेरे साथ सुन रहे हैं शोबिज राउंड अप। एक और साहब हैं जो इस हफ्ते फ्लॉप फिल्म का दर्द झेल रहे हैं, और वो हैं अपने विवेक ओबराय। खुदा खुदा करके काम मिला था और वो भी नाकामी की नजर हो गया, लेकिन विवेक फिर भी काफी एक्साइटेड है। पूछे क्यों? भाई साहब, मोदी जी का किरदार निभाया है, मजाक है क्या? अब फ्लॉप रहे तो क्या हुआ? वैसे विवेक जी, सियासत में आने की तैयारियां हैं क्या?
जी, लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप राजनीति करेंगे क्या, आप राजनीति में क्यों नहीं उतरते। 2004 में जब मैंने सुनामी के दौरान दक्षिण भारत में काफ़ी काम किया था, उसके लिए काफ़ी रिकग्निशन मिली, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, उस समय मुझे पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट ऑफर किया गया। और 2004 से 19 तक करीबन 5 बार एक बाई इलेक्शन को मिला के मुझे कोई रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टीज, अलग अलग पार्टियों से टिकट हमेशा ऑफर किया गया, और मैंने हमेशा मना किया। तो लोग पूछते हैं क्यों मना किया, तो मैं कहता हूं कि एमपी क्यों बनना जब आप पीएम बन सकते हैं स्क्रीन पर।
ये बताएं कि फिल्म में आपके लुक्स के बारे में लोगों का क्या रिएक्शन रहा?
चाहे वो जनता के रिव्यूज हो, चाहे क्रिटिक रिव्यूज हो, सब यही कह रहे हैं कि पहले 20-25 मिनट के बाद हम भूल जाते हैं कि इसमें विवेक है, ऐसा लगता है कि हम मोदी जी को ही देख रहे हैं। मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट था, क्योंकि एक चैलेंज भी रहता है जब आप एक किरदार प्ले कर रहे हैं जो 100 साल पहले रह चुके, तो उसका कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं रहता। लेकिन जब आप उस किरदार को रोज देखते हैं, तो आप उसमें गलत नहीं रह सकते, आप चूक नहीं सकते।
इलेक्शन के बाद विवेक ने सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या, सलमान और अपने हवाले से एक पोस्ट को कमेंट्स के साथ शेयर किया था। सोशल मीडिया पर काफी लान तान के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। आप माफी मांगने में काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में?
ये सवाल भी पुराना है, उसका जवाब भी पुराना है। मुझे अफसोस है कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं।
विवेक ओबराय ने तो सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जुनूबी भारत की अदाकारा राकुल प्रीत ने हमारे ढेर सारे सवालों के जवाब दिए, जो अजय देवगन के साथ फिल्म दे दे प्यार दे में लीड रोल में थी। राकुल जी, कॉमेडी फिल्म का तजुर्बा कैसा रहा?
Half the battle is won when it's written well, because comedy has to be written well. और अगर वो अच्छे से लिखी गई है और बाकी एक्टर्स भी उतने ही अच्छे हैं और टाइमिंग सब पकड़ रहे हैं, एंड हमारे लिए बहुत अच्छी बात ये थी कि अजय सर का कॉमिक टाइमिंग सबको पता है, ही इज गॉट अ स्ट्रेट फेस्ड ह्यूमर। ताबू मैम इज आल्सो गॉट दैट, एंड आई बिलीव आई हैव इट टू। सो
ये वो है जो अपनी सालगिरह खुद ही बड़े धूमधाम से मनाती है और खुशी खुशी सबको इनवाइट भी खुद ही करती है, और ये है अदाकारा नुसरत भरूचा।
बहुत यार, मेरे लिए बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने हर साल अपना बर्थडे खुद ही प्लान किया है, मैं सारी पार्टीज खुद ही थ्रो करती हूँ, एंड आई लाइक लुकिंग इनटू एवरी डिटेल कि केक भी मैं ऑर्डर करूँगी, जो डेकोर का डिटेलिंग है, म्यूजिक लिस्ट क्या है, एवरीथिंग, द ड्रिंक्स, द फूड, आई डू एवरीथिंग। आई जस्ट फील लाइक आई एम अ वेरी हैप्पी चाइल्ड।
पाकिस्तान और इंडिया समेत इस खित्ते के बेशतर इलाकों में इन दिनों मौसम शदीद गर्म हो चुका है। मौसम गर्मा का फल आम अपने जायके और खुशबू के बायस यहाँ की मरगूब ग़िज़ा है, इसीलिए उसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। लेकिन गर्मी में आम खाना कितना फ़ायदेमंद है और कितनी मकदार में इसका इस्तेमाल दुरुस्त है, मौसम गर्मा में खाने पीने में क्या एहतियात बरतना चाहिए, बीबीसी के साथी नवदेव कौर ने और गुलशन कुमार ने माहिर गजाइयत से बात की और इस बारे में राय ली।
दो मैंगो में विटामिन ए कैरोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, बट उसमें ये है कि अगर हम अब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे एंड जो राइप मैंगो होता है उसमें कैलरीज और ज़्यादा होती हैं। सो हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे आम रस है, आम पन्ना जिसको कह देते हैं, या मैंगो शेक्स हैं, तो उस फॉर्म में हमें कम से कम क्वांटिटी में मैक्सिमम आप कह लो कि 150 ग्राम तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो एग्स का ये है कि हम गर्मी या सर्दी के मौसम को नहीं मानते, हम कहते हैं कि एक एग हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एक एग से 6 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाती है और साथ में 75 to 80 कैलोरीज मिल जाती हैं। एंड जो प्रोटीन होती है एग में वो हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है कि जिसकी बॉडी में बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। सो अगर आप एक से ज़्यादा अंडे खाओगे तो नेचुरली आपकी कैलोरीज भी बढ़ेंगी, एग योक से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। मैक्सिमम इनटेक हमारे को जो चाहिए होती है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लूइड्स की चाहिए होती है। सो फ्लूइड्स में क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप नींबू पानी, कोकोनट का पानी या लस्सी ले सकते हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए बिकॉज वो डिहाइड्रेशन करते हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जितना ज़्यादा लोगे, एक तो उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और साथ में फाइबर होता है। समर्स में हम कहते हैं कि मेनली ज़्यादा फैटी फूड्स एंड फ्राइड फूड्स अवॉइड करने चाहिए बिकॉज फुलनेस आ जाती है, जितना हम खाते हैं वो ज़्यादा देर तक हमारे पेट के अंदर में रहता है, स्टाइटी वैल्यू हमारी उसकी बढ़ जाती है, जिस वजह से हम बाकी जो फूड्स हैं जैसे समर्स हैं तो हमारी फिर वाटर इनटेक कम हो जाएगी या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की इनटेक कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा फैटी एंड फ्राइड फूड प्रोसेस फूड्स अवॉइड करने चाहिए।
और अब बात करते हैं एक मुनफरद लाइब्रेरी की। दुनिया में कुरान मजीद या दीगर कुतुब की लाइब्रेरियाँ अपनी अपनी इनफरादी खसूसियात के साथ तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िले मस्तूंग में एक ऐसी छोटी सी कुरान लाइब्रेरी भी है जिसमें 85 ममालिक के कुरान मजीद के नुस्खे मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी की और क्या खसूसियात हैं, तफसील सुनिए क्वेटा से मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट में।
ये लाइब्रेरी एक कमरे पर मुश्तमिल है जो मस्तूंग शहर के नवा में किली गुलाम प्रेंज में लड़कियों के एक मदरसे में कायम है। इसके मुंतजिम मौली अब्दुल मोमिन का कहना है कि उनके वालिद को कुरान शरीफ के कदीम नुस्खे जमा करने का शौक था।
मेरे वालिद साहब कुरान पाक उनसे बहुत मोहब्बत बहुत शौक था जी। वो जिस मुल्क में तबलीग के लिहाज से जाता वहाँ से जो कुरान पाक मिल जाता वो लेके आता, पैसे से मिल जाता या हदीया से मिल जाता वहाँ से लेके आता कुरान पाक अपने साथ।
उनका कहना है कि इस लाइब्रेरी में 85 ममालिक के कुरान मजीद मौजूद हैं।
दमिश्क के भी कुरान पाक है, अमेरिका के, अफ्रीका, इस्तांबुल, तुर्की, समरकंद का भी कुरान पाक है, खानी कालात के कुरान पाक है, चीन का है, अमेरिका का है, लबनान का है, जापान का, औरंगजेब आलमगीर बादशाहों के कुरान पाक भी हमारे पास मौजूद है।
उन्होंने एक ऐसा नुस्खा भी दिखाया जो उनके बकौल जिन्नात की आत का लिखा हुआ कुरान मजीद है।
और ये जिन्नात का कुरान पाक का ये जिन्नात जिन्होंने खुद लिखा है अपने हाथों से और ये लिखा हुआ है बादाम के छिलके से और इसका हर सफ़े अलग अलग है और ये काफ का भी एक नुक्ता है और फा का भी एक नुक्ता है, काफ का ऊपर और फा का नीचे है।
उन्होंने बताया कि एक नुस्खा 1000 साल पुराना है।
1000 साल पुराना कुरान पाक है ये हमारे पास मौजूद है। इसका जो ऊपर वाला चमड़ा है ये भी ऊंट के चमड़े से बना हुआ है और ये बहुत नाजुक है और इसको लोगों ने अपने हाथों से लिखा है कलम से।
अब्दुल मोमिन का कहना था कि लोग बहुत दूर दूर से इन कदीम नुस्खों की ज़ियारत के लिए आते हैं। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
और यहाँ सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुँचा। आज प्रोग्राम की एडिटर थी नाजिर सफ़र, प्रोड्यूसर शमशाद आफरीदी और तकनीकी मावनत कर रहे थे इसरारुल हक। आसिया अंसर समेत सैरबीन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आखिर में खास खास खबरों का खुलासा साथ सुहेल से।
अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक सरकारी इमारत में होने वाली फायरिंग के नतीजे में 12 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। पुलिस की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक हो गया। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में पाकिस्तानी फौज की गाड़ी पर फायरिंग और बम हमला किया गया जिसके नतीजे में एक जवान हलाक हो गया। शाम में इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक हकूमत के अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशंस ने एक बड़ी तादाद में लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर किया है। उनका कहना है कि अब तक 3 लाख अफराद अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। कनाडा में सरकारी सतह पर की जाने वाली एक तफ्तीश ने लापता और कत्ल होने वाली मकामी खवातीन के हवाले से कहा है कि ये कैनेडियन नस्ल कशी में शुमार होता है। ये BBC उर्दू सर्विस है।